लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। जो तेरी संहिता से दूर भटकते हैं तू उनका तिरस्कार करता है। पृथ्वी के सब दुर्जनों को तू कूड़ा करकट समझता है। इसलिए मैं तेरे नियमों को हृदय से चाहता हूँ। तेरे सामने मेरा शरीर आतंक से कांपता है। मुझे तेरे निर्णयों का भय बना रहता है। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 118वें, 119वें और 120वें पदों में निहित शब्द। इन्हीं शब्दों पर चिंतन से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 119वें भजन का रचयिता इस बात के प्रति सचेत है कि जीवन उचित रीति से जीने के लिए उसे नियमों के अनुपालन की आवश्यकता है। ईश्वर द्वारा प्रकट और संहिता में निहित नियमों का पालन कर ही वह प्रभु की अनुकंपा और कृपा का पात्र बनेगा तथा विधर्मियों और विरोधियों का सामना करने में सक्षम बन सकेगा। प्रभु की प्रतिज्ञा पर उसका विश्वास अटल है और विश्वास के बल पर ही वह अपने जीवन में सफल होने का दावा करता है। वह कहता है कि हृदय से निर्मल व्यक्ति ही प्रभु की कृपा के पात्र होंगे, जबकि कपटपूर्ण व्यक्ति जीवन के यथार्थ आनंद से वंचित रहेंगे। श्रोताओ, वस्तुतः एक बार फिर उक्त पदों द्वारा भजनकार उन लोगों के प्रति ध्यान आकर्षित कराता है जो स्वार्थगत जीवन जीते हैं, वैयक्तिक दर्शन में विश्वास करते हैं और सीधे सरल लोगों पर ताने कसते हैं। वे सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं, यहाँ तक कि वयस्क होने के बाद व्यक्ति के लिए सब कुछ वाजिब है। उनके लिए जीवन का लक्ष्य और उसका उद्देश्य केवल मजा लिया जाना होता है। इसके विपरीत 119वें भजन का रचयिता दुमुखी पाखंडियों से खुद को दूर रखना चाहता है और हृदय की निर्मलता के साथ प्रभु के नियमों पर चलते रहने का प्रण करता है, ताकि अखंड पूर्ण विपुल जीवन और प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार नव जीवन प्राप्त कर सके।
तुमरी मैं तो बांसुरिया प्रभु।
आगे 119वें भजन के 121 से लेकर 124 तक के पदों में भजनकार कहता है, मैंने न्याय और धार्मिकता का आचरण किया है, मुझे मेरे अत्याचारियों के हाथ न पड़ने दे, अपने सेवक की सुख शांति की रक्षा कर, जिससे घमंडी मुझ पर अत्याचार न करें। तेरी मुक्ति और तेरी न्याय संगत प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए मेरी आंखें तरसती रहती हैं। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कर और मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। यहाँ भजनकार दावा करता है कि उसने न्याय और धार्मिकता के आधार पर आचरण किया है, इसलिए अब वह ईश्वर से अपेक्षा करता है कि प्रभु ईश्वर उसे अत्याचारियों के हाथों में न पड़ने दें, ईश्वर सदैव उसकी रक्षा करें। भजनकार के ये शब्द कुछ वैसे ही हैं जैसे कि अय्यूब अथवा योब के थे। अय्यूब के ग्रंथ के 17वें अध्याय के 3रे पद के अनुसार, स्वतः को निंदकों से घिरा हुआ पाने पर अय्यूब प्रभु को पुकार उठता है, कहता है, प्रभु तू ही मेरे लिए जमानत दे, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं करेगा। एक प्रकार से वह अपनी दुर्दशा के लिए ईश्वर को ही दोषी मानता है, जिन्होंने विरोधियों, निंदकों अथवा विधर्मियों की बुद्धि कुंठित कर दी है। श्रोताओ, ऐसा बहुत बार हमारे साथ भी होता है। कितनी बार अपनी व्यथाओं के लिए, अपने दुख कष्टों के लिए हम ईश्वर को दोषी ठहराने लगते हैं। हमारे मन में कई बार ये विचार उठते हैं कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, उनके नियमों का पालन करते रहते हैं, तो फिर दुख कष्ट हम पर क्यों कर आते हैं। जबकि सच तो यह है कि कठिन परिस्थितियों में पढ़कर ही हम जीवन के सच को जान पाते हैं, दुख में पढ़कर ही सुख के आनंद को समझ सकते हैं, दुख कष्टों के द्वारा ही ईश्वर के नियमों के मर्म को समझ पाते हैं। यदि दुख ही नहीं होगा तो सुख के अर्थ को कैसे समझ पाएंगे। जीवन उबाऊ और नीरस बन जाएगा। दुख और कष्टों में ही हम प्रार्थना के महत्व को समझ पाते हैं। कष्टकर स्थितियों में दूसरों के पाप क्षमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों को चाहे वे कैसे भी हों स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अन्यों को अपनी तरह प्यार करने के लिए तत्पर रहते हैं, ताकि सभी को ईश्वर के करीब ला सकें। इस प्रकार संहिता के शब्द अथवा ईश्वर के नियम जीवन के सभी पहलुओं पर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं, जबकि मिथ्याचार केवल मृत्यु की ओर ले जाता है। फिर 119वें भजन के 125 से लेकर 130 तक के पदों में भजनकार कहता है, मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे विवेकशील बना और मैं तेरे आदेशों का ज्ञान प्राप्त करूंगा। प्रभु, हस्तक्षेप करने का समय आ गया है, तेरी संहिता का उल्लंघन किया जाता है। सोने परिष्कृत सोने की अपेक्षा मुझे तेरी आज्ञाएं अधिक प्रिय हैं। मैं तेरे सभी नियम न्याय संगत मानता और असत्य के सब मार्गों से घृणा करता हूँ। तेरे नियम अपूर्व हैं, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती और अनपढ़ों को भी विवेकशील बना देती है। भजनकार स्वीकार करता है कि मनुष्य प्रभु ईश्वर का सेवक है और उनसे विवेक एवं प्रज्ञा की याचना करता है। प्रभु अपने सेवकों पर दया दृष्टि करें, जिससे कि उन्हें ईश आदेशों के पालन का विवेक मिले। कहता है, प्रभु अब हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। मानो कह रहा हो कि मैंने तो तेरी आज्ञाओं का पालन किया, यहाँ तक कि परिष्कृत सोने से भी अधिक मुझे तेरी आज्ञाएं प्रिय हैं। इसलिए प्रभु अब हस्तक्षेप कर और मेरी सुधि ले। यहाँ भजनकार सभी मनुष्यों से ईश आज्ञाओं के पालन का अनुरोध करता है, क्योंकि यही शर्त है सुखद जीवन की। कहता है, प्रभु के नियम अपूर्व हैं, इसलिए जिस तरह से वह उनका पालन करता है वैसे सभी मनुष्य करें। वे सब के सब प्रभु की शिक्षा पर ध्यान दें, इसलिए कि प्रभु की शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। श्रोताओ, प्रभु की शिक्षा को जान लेना या सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर मनन करना, उसकी व्याख्या करना आवश्यक है, क्योंकि इससे मनुष्य आलोक प्राप्त करता है। प्रभु की शिक्षा अशिक्षितों को भी विवेकशील बना देती है।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। ख्रिस्त वह है जो यीशु के उस रास्ते को स्वीकार करता है जिसको उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपनाया। वह है अपमान का रास्ता। यह बात संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन स्थित प्रेरितिक आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में ख्रिस्ताग अर्पित करते हुए प्रवचन में कही। आज के सुसमाचार पाठ में यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे क्या कहते हो। इस पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि सुसमाचार हमें यीशु कौन है उसे जानने के लिए प्रेरितों द्वारा लिए गए चरणों के बारे सिखलाता है। यीशु को जानने के लिए तीन चरण हैं: ईश्वर द्वारा यीशु को दिए गए रास्ते को जानना, विश्वास को व्यक्त करना और उस रास्ते को अपनाना। संत पापा ने कहा कि जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं तब हम यीशु के बारे जानते हैं। जब बच्चों को धर्म शिक्षा दी जाती है और उन्हें गिरजा लाया जाता है तब वे यीशु को जानने की कोशिश करते हैं, किंतु यह केवल पहला कदम है। दूसरा कदम है यीशु पर विश्वास की अभिव्यक्ति। यीशु पर विश्वास की अभिव्यक्ति को हम अकेले नहीं कर सकते। संत मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु पेत्रु से कहते हैं, यह तुमने नहीं बल्कि पिता ने तुझ में प्रकट किया। अतः हम यीशु पर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति तभी कर सकते हैं जब ईश्वर हमें कृपा प्रदान करते, पौत्र आत्मा की कृपा। संत पौलुस कहते हैं कि पौत्र आत्मा की शक्ति के बिना कोई भी यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। यही कारण है कि ख्रिस्त समुदाय को हमेशा पौत्र आत्मा की शक्ति की याचना करनी चाहिए जिससे कि हम उन्हें ईश्वर कह सकें, उन्हें ईश्वर के पुत्र स्वीकार कर सकें। संत पापा ने कहा कि यीशु के जीवन का क्या मकसद था, वे क्यों आए। इस सवाल का उत्तर देने का अर्थ है उन्हें जानने के तीसरे चरण को अपनाना। संत पापा याद करते हैं कि इसके बाद यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे बतलाते हैं। यीशु पर विश्वास करने का अर्थ है उनकी मृत्यु, उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करना, न कि यह घोषणा करना कि आप ईश्वर हैं और वहीं पूर्ण विराम कर देना, बल्कि हमें घोषणा करना चाहिए कि वे हमारे लिए आए, हमारे लिए मरे और जी उठे। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमारे मार्गदर्शन के लिए पौत्र आत्मा की प्रतिज्ञा की। यीशु पर अपने विश्वास की अभिव्यक्ति करने का अर्थ है पिता के उस रास्ते को अपनाना जिन्होंने यीशु के लिए अपमान का रास्ता चुना। यदि हम यीशु के रास्ते को स्वीकार नहीं करते हैं जो अपमान का रास्ता है जिसको उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए चुना, न केवल हम ख्रिस्त कहलाने के लायक नहीं हैं, बल्कि हम यीशु ख्रिस्त के उस फटकार के योग्य हैं, जिसको उन्होंने पेत्रुस पर लगाई, हट जाओ शैतान। संत पापा ने गौर किया कि शैतान ठीक से जानता था कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, फिर भी यीशु उसकी घोषणा को अस्वीकार करते हैं जब वे पेत्रुस को दूर हटने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने यीशु के रास्ते को अस्वीकार किया। सेंट पापा ने कहा कि यीशु की घोषणा करना वास्तव में यीशु के रास्ते को स्वीकार करना है, जो दीनता और अपमान का रास्ता है। जब कलीसिया इस रास्ते पर नहीं चलती है, तब वह गलती करती है। वह दुनियादारी के रास्ते पर चलती है। उन्होंने कहा कि जब हम अच्छे ख्रिस्तियों को देखते हैं, जो अच्छा विचार रखते किंतु धर्म को दयालुता अथवा मित्रता के सामाजिक विचार के दायरे में रखने के भ्रम में रहते हैं, जब हम उन पुरोहितों को देखते हैं जो कहते हैं कि हम यीशु का अनुसरण करते हैं किंतु सम्मान और वैभव की खोज करते दुनियादारी के रास्ते को अपनाते, तब वे यीशु का अनुसरण नहीं करते बल्कि अपनी खोज करते हैं। भले ही वे खुद को ख्रिस्ते बतलाते किंतु वे ख्रिस्ते नहीं हैं, क्योंकि वे यीशु के रास्ते को नहीं अपनाते जो अपमान का रास्ता है। संत पापा ने कलीसिया के इतिहास की याद की कि कई धर्माध्यक्षों एवं संत पापाओं ने भी दुनियादारी का जीवन जिया। वे अपमान के रास्ते को नहीं जानते थे, उन्होंने उससे स्वीकार नहीं किया। संत पापा ने कहा कि हमें इससे सीख लेना चाहिए, क्योंकि यह सच्चा रास्ता नहीं है। उन्होंने उपदेश के अंत में विश्वासों को निमंत्रण दिया कि वे ख्रिस्तता की कृपा के लिए प्रार्थना करें। ख्रिस्तता का प्रयोग ऊंचाई हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि यीशु का अनुसरण उनके रास्ते पर अपमान सहने तक करने के लिए करें। और संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक न्याय दिवस पर प्रसिद्ध ट्वीट संदेश में गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने संदेश में लिखा, गरीब और वंचित लोगों के लिए विकल्प हमें प्रेरित करता है कि हम उनकी भौतिक गरीबी को दूर करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें, किंतु उन्हें प्रभु के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करें, जो उन्हें प्यार करते और उन्हें अपार गरिमा प्रदान करते हैं। संत पापा फ्रांसिस रविवार को इटली के बारी शहर जाएंगे, जहां वे एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन की विषय वस्तु है भूमध्य सागर शांति की सरहद। भूमध्य सागर की सीमा क्षेत्र के 19 देशों के कुल 60 कार्तिक धर्माध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इटाली कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल ग्वाल्टिएरी बसेत्ती ने बतलाया कि सम्मेलन को सिनट के तरीके से किया जाएगा, जिसके अनुसार अंतिम दस्तावेज के लिए साझा प्रस्तावों का नियमन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है भूमध्य सागर को सभ्यताओं के मिलन स्थान के रूप में व्यक्त किया जाएगा, एक ऐसा स्थान जहां ख्रिस्तीय धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और इसलिए यह शांति की सरहद है। सम्मेलन में उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के प्रतिभागी शामिल होंगे, जो विस्थापन, युवाओं के सुसमाचार प्रचार, बेरोजगारी, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं शांति निर्माण पर बात करेंगे। यूरोपीय संघ के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित पत्र में समग्र मानव विकास हेतु गठित परम धर्म पीठ परिषद में आप्रवासी एवं शरणार्थी विभाग के उप सचिव कार्डिनल माइकल चर्नी, संत पापा के अनुदान समिति के अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड ग्राजेवोस्की एवं यूरोपीय संघ के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जॉन क्लाउडे होलेरिक ने अपील की है कि लेस्बोस द्वीप के अप्रवासियों को यूरोप के दूसरे देशों में पुनर्वास के लिए दिया जाए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।